बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 12 जनवरी, दिन शनिवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। संसद के दोनों सदनों ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की। कोई इसे मोदी सरकार का एक राजनीतिक स्टंट बता रहा है, तो किसी का कहना है कि ये सवर्णों के साथ एक छलावा है। आखिर इस आरक्षण व्यवस्था के क्या अर्थ निकाले जाएं? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया। दोनों दलों ने कहा कि वो लोकसभा में यूपी की 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई है और बाकी दो सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए नहीं, बल्कि ये लंबा चलेगा और स्थायी है। अमरीकी सरकार में आंशिक कामबंदी को 22 दिन हो गए हैं। इस तरह से ये अमरीका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है, मगर अभी भी इस मामले को सुलझाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स मेक्सिको के साथ लगती सीमा पर दीवार बनाने के लिए फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप डेमोक्रेट्स को बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मगर अभी बैठक तय नहीं हो पा रही है। इस कारण लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। वर्जीनिया में संघीय सरकार के तहत काम करने वाली सनी ब्लेलॉक नाम की महिला ने कहा,
The dog walkers, the restaurants, the shops. So it's hurting everyone. We're all being affected.
कुत्तों की देखभाल करने वाले हों या फिर रेस्टोरेंट या दुकान चलाने वाले, हर कोई मुश्किल में है। हम सभी प्रभावित हो रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये सब कब तक चलता रहेगा। मुझे अपना काम पसंद है, लेकिन मैंने और योजनाएं बनाना भी शुरू कर दिया है। मेरे पति बिना वेतन के काम कर रहे हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा कि इन हालात में कब तक परिवार का गुजारा चल सकेगा। ये थी वेतन ना मिलने से परेशान एक अमरीकी महिला के शब्द। व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के उन आरोपों को गलत बताया है, जिनमें दावा किया गया है कि एफबीआई ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप चुपके से रूस के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहे। अखबार कहता है कि एजेंसी के अधिकारियों ने उस समय ये जाँच शुरू की जब उन्हें राष्ट्रपति के व्यवहार पर शक हुआ। ये उस समय की बात है जब उन्होंने एफबीआई के निदेशक जेम्स कॉमी को हटा दिया था। ट्रंप की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने कहा कि जिस समय जांच शुरू हुई थी, उस समय एजेंसी के प्रमुख रहे एंड्रयू मैककबे झूठे हैं। उन्हें एफबीआई ने नौकरी से निकाल दिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इमारत की सबसे निचली मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ है। माना जा रहा है कि धमाका गैस लीक होने के कारण हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हालांकि 20 अन्य को हल्की चोटें आई हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी धमक कई मीटर दूर गलियों में भी महसूस की गई। पेरिस में सरकारी अभियोजक रेमी हिट्स ने कहा,
À ce stade, nous pouvons dire qu'il s'agit manifestement d'une origine accidentelle.
अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि धमाका गैस लीक के कारण हुआ है। हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये धमाका कहाँ हुआ, गैस कहाँ लीक हुई। अभी हमें ये पता है कि पहले गैस लीक हुई, फिर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी यहाँ पहुंचे और उसके बाद आग लगने से धमाका हुआ। ये थे पेरिस के सरकारी अभियोजक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने कहा है कि जो देश अब भी ईरान से तेल खरीद रहे हैं, वो उन्हें और रियायतें देने का इरादा नहीं रखता। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने ये नहीं बताया कि पहले से दी गई रियायतें कब, जब मई में ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा। अमेरिका ने चीन, जापान और भारत को ईरान से तेल खरीदने पर लगने वाले कड़े प्रतिबंधों पर छूट दी हुई है। बीते साल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते से हटने का ऐलान किया था। उसके बाद नवंबर में ये प्रतिबंध लगाए गए थे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। संसद के हाल में बीते शीतकालीन सत्र के दौरान हुई मंत्रिमंडल के बैठक के बाद फैसला लिया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस बैठक के चंद दिनों के अंदर ही संसद के दोनों सदनों में चली 18 घंटे से भी अधिक लंबी चर्चा के बाद बीते मंगलवार को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा से संविधान का 124वां संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। इसके तहत अब आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण दिया जा सकेगा। विपक्ष ने इसे मोदी सरकार का वोट बटोरने के लिए किया गया प्रयास बताया है और कहा है कि ये उनके साथ एक छलावा है। हमारी टोल फ्री टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नंबर नोट कर लें, हमारा नंबर है 1811-7000 और 1811-7001। कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में भाग ले रही हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस। अदिति जी, आपका बीबीसी इंडिया बोल में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार
जी। नमस्ते अदिति जी। मेरा पहला सवाल है कि आर्थिक रूप से जो व्यवस्था की गई है, पिछड़े जो सवर्ण हैं आर्थिक रूप से, उनको जो आरक्षण देने की व्यवस्था है, क्या वह आरक्षण की जो मूल आत्मा है जो हम संविधान में दिया गया है कि शैक्षिक हो और सामाजिक रूप से पिछड़े हो, तो उसकी मूल आत्मा से कितना मेल खाती है आपके लिहाज से?
देखिए, जो हम लोगों को सिखाया गया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो इतिहास है आरक्षण का, उससे तो बिल्कुल मेल नहीं खाता है। क्योंकि आरक्षण उन लोगों के लिए माना जाता था जो कि सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, न कि जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। आर्थिक तौर पर पिछड़े कौन हैं? और अगर आकलन किया जाए तो देखा जाएगा कि मेरे ख्याल से अधिकतर भारत की जनसंख्या आर्थिक तौर से पिछड़ी है। तो इस आधार पर यदि आप आरक्षण शुरू कर देंगे तो फिर तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक वर्ग ऐसा है जिसको कि जिस अपने गलती से काम नहीं मिला है और समाज ने उस पर एक संज्ञा थोपी है जिसके चलते वो काम नहीं कर पा रहा है, काम मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ही लो एंड वर्क जिसे कहते हैं
जी।
तो इस उनके लिए आरक्षण बनाया गया था, ये व्यवस्था बनाई गई थी।
अदिति जी, जिस तरीके से हम लोग फेसबुक पे भी अपनी ये इंडिया बोल के विषय को लेकर एक पोस्ट करते हैं, उस पर भी टिप्पणियाँ आई हैं, लगातार कई हो रही हैं, उसमें जिस तरीके से आपने कहा कि अभी सामाजिक रूप से पिछड़े रहे हों, जिनको मौके ना मिले हों, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, तो इसमें एक सरला सिंह है, वो कहती हैं कि आरक्षण सिर्फ विकलांग को मिलना चाहिए। उनका कहना है कि दुनिया के किसी देश में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण नहीं है, फिर भारत में क्यों हो। उसी का ही जवाब देते हैं अमित कुमार, वो कहते हैं धर्म और जाति के आधार पर कई पीढ़ी भेदभाव का इतिहास भी सिर्फ भारत में रहा है।
बिल्कुल सही है, और यही चीज़ है, क्योंकि जाति सिर्फ हमारे देश में है, और जगहों पर भी जाति है। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में गोईगामा जो जाति होती है उसे सबसे उच्च जाति सवर्णों में माना जाता है, लेकिन श्रीलंका में जाति पर बहस करना या उस पर बात करना बहुत ही शर्मनाक चीज़ मानी जाती है। तो कोई जाति पर कोई डिस्कशन या राजनीतिक उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन, इस तरह का वर्गीकरण केवल हमारे समाज में नहीं है, हमारे आसपास के जो देश हैं उनमें भी इस तरह का है। और हमारे यहाँ देखा जाए तो मुसलमानों में भी वर्गीकरण है, जिन्होंने शायद एक तरह से कॉपीकैट हिंदू समाज में जिस तरह से होता है वैसे ही अपने समाज में भी बनाया। तो अशरफ अजलफ का अंतर है, और सैयद और पठान तो माने जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में एक
जाति व्यवस्था खड़ी कर दी गई हर जगह। रुक करते हैं अपने कॉलर्स का जो हमारा इंतजार कर रहे हैं टेलीफोन लाइनों पर। कुछ श्रोता जुड़ चुके हैं हमें, शाकिर आलम हमारे स्टूडियो मैनेजर बता रहे हैं कुछ कॉलर जो हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
पठान खान जी बोल रहा हूँ, बाड़मेर राजस्थान से।
बाड़मेर राजस्थान से पठान खान जी, जी बताएं क्या है राय आपकी?
हमारी सही है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता से देश के हनन किया है उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। अब आरक्षण 50% से भी ऊपर चला गया है, ये देखिएगा
जी।
और इस आरक्षण में, आरक्षण ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जो भावनाएं थी उनको भी ठेस पहुंचाई है। अगर इस तरह से आरक्षण मिल रहा है तो मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है, जो पहले कमेटी गठित की थी उसके भी नियमों को पालना चाहिए ना
जी। पठान खान जी,
तो हम ये चाहते हैं कि जो भी आरक्षण मिला ये बिल्कुल गलत है, उन लोगों को मिला है। अब आर्थिक जो सामाजिक रूप आर्थिक रूप से पिछड़े को मिला, अब जनरल कैटेगरी वाले सारे ही आरक्षण का फायदा लेंगे
जी। रुक करते हैं अगले कॉलर का। पठान खान जी शुक्रिया। एक अगले कॉलर कौन है जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप?
हेलो
जी,
हम नागेंद्र कुमार कुशवाहा पिपराही बाजार जिला सिवर बिहार से बोल रहे हैं।
जी नागेंद्र जी बताएं, अपनी राय रखें।
सबसे पहले तो आपको नमस्कार।
नमस्ते नागेंद्र जी, स्वागत है आपका।
यहां सवाल यह उठता है सर हमारे देश में भारत के अंदर
जी
कि जब से मोदी सरकार आए हैं समझे ना, ये 2 करोड़ जनता को क्या कहते हैं नौजवानों को नौकरी देने की बात कही समझे कि नहीं, और आज तक एक भी आपको नौकरी नहीं लगी समझे ना, और फिर ऊपर से 10% इन्होंने सबन थी नौजवानों के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बात है, कोई भी कमजोर है उसको मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं लगता है कि सरकार में किसी को भरपाई कर पाएंगे, सरकार एक छलावा है
जी। नागेंद्र जी धन्यवाद बहुत जी। बहुत नागेंद्र जी आपकी अपनी राय के लिए। अदिति जी, पठान खान जो अभी थे बाड़मेर से, उन्होंने कहा कि 50% की व्यवस्था रही है, और जो अभी अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है उसके लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था है, और जब अभी संविधान संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी तो उस दौरान समाजवादी पार्टी समेत बहुत सारे जो दल थे वो मांग उठा रहे थे कि आबादी के अनुपात के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, यानी कि 54% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये क्या एक नई ओबीसी वर्ग को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है कि जो नई आरक्षण व्यवस्था है क्या उसने कुछ खतरे पैदा किए हैं?
खतरे पैदा किए भी हैं और अब ये मांग बढ़ेगी भी, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक एक लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था 50% का। आपने देखा होगा कि जब मराठा मूक मोर्चा निकला महाराष्ट्र में और आरक्षण की मांग हुई तो उस समय भी सरकार ने इसी आड़ में कि 50% कोर्ट का आदेश है इसीलिए हम 50% को से आगे नहीं जा सकते हैं आरक्षण के मामले में, यही दलील रखी सरकार ने भी। अब वो 50% ब्रीच हो गया है, अब उसकी वो है ही नहीं। अब तो जगह जगह से अब मांग उठेगी कि अगर आपने उनके लिए कर दिया है तो हमारे लिए क्यों नहीं। जाट आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
राजस्थान में गुर्जर है
निश्चित रूप से,
में पटेल हैं,
और फिर जाट आरक्षण में सवाल यही है कि अगर आपको 50% की सीमा तक रहना है तो आप सैनी से लेके जाट को देंगे, तो अब किसी से लेके किसी को देना ये तो उचित नहीं है, ये तो बहुत ही पेचीदा मामला उठ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये सवाल भी अब उठेगा जगह जगह,
इसका डर बना हुआ है आशंका का। अदिति जी एक अगले कॉलर को लेते हैं, हमारे स्टूडियो मैनेजर शाकिर आलम बता रहे हैं कोई महिला कॉलर हैं। जी क्या नाम है आपका और कहां से बोल रही हैं आप?
जी नमस्ते सर, मैं गौरी सेन बात कर रही हूँ लखनऊ से।
जी गौरी बताएं क्या है राय आपकी?
जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण हैं उनको आरक्षण की निश्चित रूप से आवश्यकता तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे समय समय पर प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अब संविधान संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि पहले सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही था ये तो। लेकिन मुझे इसमें ये जो बात लगती है कि जो इनका जो सीमा है जैसे 8 लाख रुपए साल वार्षिक वाला, उसको इन्हें निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसको कम करना चाहिए। और इसके बाद में ये कहना चाहूंगी कि रोजगार का तो देखिए लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, तो इस पर खुश होने के बजाय कि रोजगार में आरक्षण मिल रहा है, हमें इस बात पे ज्यादा खुश होना चाहिए कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी आरक्षण जो है वो सवर्ण जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको मिलेगा, बशर्ते कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से इसका हो सके। और जो इसमें सभी धर्मों को रखा गया है, ये भारत की जो सेक्युलर जो धर्म निरपेक्ष जो एक भावना है संविधान की, उसके लिए ये बहुत अच्छा है।
जी धन्यवाद जी गौरी जी, धन्यवाद अपनी राय के लिए। हम लेते हैं एक अगले कॉलर को। जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
नमस्कार सर, मैं परवेज बात कर रहा हूँ।
जी परवेज, जी परवेज बताएं।
जी मैं इस पर विषय पे अपनी राय ये रखना चाहता हूँ कि जो पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देने का मामला है
जी।
इसकी मांग तो काफी दिनों से चल रही थी और समाज में जो असंतोष है जो पिछड़े वर्ग है उनको एड्रेस करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है और सरकार ने जो समय चुना है ये तो जो एक मास्टर स्ट्रोक जैसे बचा के रखा था कि चुनाव से ठीक पहले ताकि उसका माइलेज भी लिया जा सके और ये एक लोकतंत्र में व्यवस्था रही है कि पार्टी जो सत्ता में रहती है वो उसका लाभ लेने का पूरा कोशिश करती है। तो इस ये कदम उठा के सरकार ने जो मांग थी वो भी पूरी कर ली है और उस मांग को पूरा करके वो जो अपने लिए लाभ ले सकती है उसने उसका भी प्रयास किया है।
जी परवेज जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय के लिए। अदिति जी जैसे अभी ये गौरी सेन ने कहा कि 8 लाख रुपए और जो जो एक आरक्षण की पात्रता की जो इसमें बात की गई है उसमें कहा गया है कि जिस परिवार की आय 8 लाख से कम है या जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है वो इसके दायरे में आएगा। और गौरी ने भी वही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि 8 लाख का दायरा जो है उसको कम किया जाना चाहिए। यही बात अभी रालोद के नेता जो हैं राष्ट्रीय लोकदल चौधरी अजीत सिंह उन्होंने कहा कि इसका दायरा 2 लाख किया जाना चाहिए। तो इसकी जो पात्रता है उसके सवाल उठ रहे हैं कि 8 लाख रुपए तक कमाने वाला कहाँ गरीब हुआ।
है भी और नहीं भी है क्योंकि गरीबी रेखा से तो ऊपर ही है लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो हाँ उतना संपन्न नहीं है जितना और लोग हैं। हमारे देश में यही जटिलता है। दूसरी बात जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि गौरी जी ने जो सवाल उठाया ये बहुत ही जटिल समस्या है क्योंकि कानून संशोधन विधेयक में जो कानून लागू हुआ है संविधान संशोधक विधेयक में उसमें ये प्रावधान है कि प्राइवेट पब्लिक एडेड अनएडेड सब जगह ये रिजर्वेशन लागू होगा लेकिन आरक्षण प्राइवेट संस्थाओं में शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए भी नहीं है तो कुल मिला के उनके लिए क्यों और उनके लिए क्यों नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो सरकारी पैसे जहाँ जाते हैं और जो सरकारी पैसों का इस्तेमाल करता है आरक्षण तो उसके लिए उन संस्थाओं में होना चाहिए। अगर हम अपने अपने विचार से अगर हम एक स्कूल खोलते हैं तो हम और फीस लेते हैं तो हम क्यों कर भैया आरक्षण करेंगे, हम तो किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम अपने पैसे से उसको खड़ा कर रहे हैं
जी।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे मेरे ख्याल से कई काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होंगी आने वाले समय।
कॉम्प्लिकेशंस की आपने बात की अदिति जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल के पास होने के बाद जब राज्यसभा से पास हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया कि इसका पास होना संविधान निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए श्रद्धांजलि है। जबकि संविधान निर्माण के समय आरक्षण के लिए लंबी बहस भी चली थी, उस समय आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि उस दौरान आर्थिक आधार पर चर्चा हुई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पाया। तो क्या जो अभी कह रही कॉम्प्लिकेशन होंगी आप, तो क्या इस पर क्या लगता है सीधा सीधा कि कोई होमवर्क नहीं हुआ इस पूरे के पूरे जो बिल ये लाना चाह रहे हैं आर्थिक आधार पर जो इन्होंने आरक्षण देना चाह रहे हैं?
नहीं, मेरे ख्याल से होमवर्क काफ़ी हुआ है और अब नहीं पहले भी हुआ है। आपको याद होगा ये तो सर्वविदित है कि नरसिम्हा राव की सरकार लाने की कोशिश की और वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये तो सब इस पर रिसर्च तो बहुत हो चुकी है और 8 लाख का की सीमा इसलिए लगाई गई थी क्योंकि ओबीसी आरक्षण 8 लाख की सीमा तक है जो क्रीमी लेयर वाला मामला है उसके तहत 8 लाख की सीमा लगाई गई है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की बात है उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि ये आरक्षण और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इन्हीं इन संस्थाओं में है
जी।
तो मेरे ख्याल से स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा के मामले में ये आरक्षण मेरे ख्याल से सबसे महंगा सिद्ध होगा सरकार के लिए।
चलिए हम रुक करते हैं अगले कॉलर का। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप और कौन है आप, नाम बताएं अपना।
मैं शंभू शरण बोल रहा हूँ सर।
जी शंभू जी बताएं।
और मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ
जी। राय रखें अपनी।
हाँ पहले तो धन्यवाद
जी,
ताकि आप लोगों ने इतना बर्निंग
जी, बहुत 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 स्वागत है आपका, अपनी राय रखें।
हाँ, हाँ एक जो अदिति जी बोल रही है साहब
जी,
क्या कि ये जो इशू ये क्या नाम है और आगे बढ़ेगा उससे मैं भी इत्तफाक रखता हूँ, ये अब देश के सामने एक नई और लोगों के लिए एक नई समस्या उत्पन्न करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि इनके बात को मैं थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि इस
जी जी शंभू जी की उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, एक अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जी।
हेलो
जी, अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप, बताएं।
जी मेरा नाम रूपलाल प्रसाद है सर
जी,
मैं झारखंड के चतरा जिले से बोल रहा हूं।
जी रूपलाल जी बताएं।
सर मैं ये कहना चाह रहा था इस बारे में
जी
कि जो भी आरक्षण दिया गया है ना
जी,
वो तो मात्र 10 साल के लिए था, लेकिन बढ़ाते 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 ही चला गया
जी,
कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दायरे में आने के वजह से इसको और बढ़ाते चला गया। लेकिन सर मैं देख रहा हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि मैं बीसी से बिलोंग करता हूँ
जी,
लेकिन मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ सर कि बहुत से ऐसे स्वर्ण हैं जिनको खाने के लिए सोचना पड़ता है सर, और उनको ऐसा भी है कि वो कोई काम भी नहीं कर पाते हैं, या उनको ऐसा कोई काम नहीं मिल पाता है जिसके चलते वो जाति के वजह से जिसके चलते वो गरीब के गरीब ही होते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो ये सरकार 10% का आरक्षण दे रही है मेरे समझ से बहुत ही उचित है, परंतु तकनीकी खामियां हैं जिसको दुरुस्त अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा।
जी रूपलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तकनीकी खामियों की बात कर रहे हैं अदिति जी, तो तकनीकी खामियां 8 लाख रुपए और 5 एकड़ जमीन, क्या इसके अलावा आपको क्या नजर आता है?
पहली बात तो रूपलाल जी बहुत उदार हैं कि इसकी पुष्टि कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि एक गलती थी जो कि अब सुधार दी गई है। लेकिन खामियां मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में और निकल के आएंगी, लेकिन और लोग अन्य वर्गों के लोग भी ये सवाल पूछेंगे, और अगर आरक्षण राज्य के लेवल पर होता है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि राज्यों में नौकरियां ज़्यादा हैं, केंद्र में नौकरी उतनी ज़्यादा है नहीं, और वैसे भी स्पर्धा काफ़ी होती है
और कई राज्यों में तो ज़्यादा आरक्षण लगा हुआ है, जैसे तमिलनाडु में तो 50% के बहुत ऊपर चला हाँ, गया है।
काफ़ी दिन पहले उन्होंने उसको क्रॉस कर दिया था, और आंध्र में भी क्रॉस हो गया है, तेलंगाना में क्रॉस होने की बात हो रही है, तो अब देखना है कि आरक्षण कितना जनरल कैटेगरी में कितने लोग आते हैं।
जी अदिति जी मुख्य सवाल पर आते हैं, जिस पे अभी हम लोग नहीं आए थे और जिस पे जो इस पूरे आरक्षण को लेकर जो बहस चल रही है वो मुख्यतः वही है। शंभू शरण जो पहले कॉलर थे उन्होंने भी कहा कि सरकार को दिक्कतें होने वाली हैं और सारी चीज़ें, लेकिन इसके पीछे आपको क्या उद्देश्य नज़र आता है कि इस कदम को क्या राजनीतिक कदम माना जाए या सामाजिक पृष्ठभूमि में उठाया गया कदम माना जाए?
मेरे ख्याल से दोनों लागू हैं। पहली बात तो भाजपा ने जो मात खाई इधर असेंबली के चुनावों में, उसके बाद मेरे ख्याल से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर भाजपा ये मान रही है कि गलती हो गई और ये पहले कर देना चाहिए था। तो हर सरकार अपने स्वार्थ में अपने हित में सोचती है, अपने हित के बारे में जाहिर है, सरकार को अगर शासन करना है तो वो वही करेगी जो उसके हित में होगा, और उसको लग रहा है कि सवर्णों की हमारी समर्थन क्षेत्र से हट रहे हैं, कट रहे हैं, और उनको जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है।
जी अदिति जी बढ़ते हैं एक अगले कॉलर की ओर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस जी हैं, आप हमारे यहाँ मुफ्त कॉल कर सकते हैं 1811-7001 पर। कौन है अगले श्रोता, नाम बताएं अपना और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो मैं किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ, गौतम दत्ता बोल रहा हूँ।
जी गौतम दत्ता जी राय रखें अपनी।
जी मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के मूल उद्देश्य से भटक कर ये सरकार सारा कार्यक्रम बेकारी की ज्वलन समस्या जो थी उसको बार बार विपक्ष हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, जिसको जड़ से काटने की नीयत से ऐसा कदम उठाया गया लगता है
जी।
वैसे एक आंकड़ा ये बताता है कि जो ये उच्च वर्ण के लोग हैं 80% इस के दायरे में आएंगे, इसका मतलब है कि मात्र 10% उनके पक्के हुए, और जिनकी आय 65,000 से ऊपर है मासिक आय, तो वैसे लोग गरीब कैसे हुए ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि उनको तो इनकम टैक्स में भरना पड़ रहा है
जी।
तो ऐसा जी ऐसा होना चाहिए था कि सरकार जॉब क्रिएशन जो गिरता जा रहा है उसको ढंग से बढ़ाने की जरूरत है, यानी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जॉब क्रिएशन अधिक से अधिक हो, यानी ये ऐसा मुद्दा उठे ही ना। और मांग जो आरक्षण की मांग बार बार हम लोग जिससे हम लोग उलझे रहते हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए
जी। रुक करते हैं, शुक्रिया अपनी टिप्पणी के लिए। देखते हैं, सुनते हैं अगले कॉलर कौन है। जी अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप, ये बताएं।
हेलो
जी, जी अपना नाम बताएं।
नमस्कार
जी। नमस्कार,
मैं अनिल डोबरियाल जारीखाल ब्लॉक के बुराची गांव से बोल रहा हूँ, जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ सर।
जी पौड़ी से बात कर रहे हैं अनिल जी, बताएं जी, अपनी राय रखें।
भाई साहब, वैसे सामान्य जातियों को तो आरक्षण पहले ही दे देना चाहिए था सरकार को, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो ये आरक्षण का जो चिकूफा इस समय चुनाव के समय छोड़ा है, ये अगर भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में नहीं हारती तो उनको आरक्षण, सामान्य जातियों के लिए आरक्षण की बात याद नहीं आती, लेकिन अब जब वो 3 राज्यों में सत्ता गंवा चुके हैं तो अब उनको सामान्य जातियों की याद आ गई। वैसे सामान्य जातियों में कई उपजातियां हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आरक्षण का निर्धारण होगा वो कैसे होगा, और मेरी ये भी डिमांड है कि जो कम से कम जो प्रति व्यक्ति आय रखी गई है 8 लाख रुपए, उसको घटा करके 2 लाख रुपए रखी जाए, और जो 5 एकड़ जो जमीन भी रखी गई है उसकी समय सीमा भी उसको भी घटा करके 2 एकड़ रखी जाए, क्योंकि यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी बहुत से सामान्य जातियों के पास कम खेती है, तो आपको आरक्षण का लाभ कैसे करके मिलेगा। धन्यवाद
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल डोबरियाल जी की, बड़ी अदिति जी बहुत लंबी चौड़ी टिप्पणी
और बहुत पैनी टिप्पणी।
तो ये चुनाव हारने को लेकर इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ये एक कदम उठाया है। अदिति जी, आज ही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हो गया है, और ऐसे अनुमान लगाए गए कि सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के जो 18-20% सवर्ण वोट हैं उनको साधना भी है, लेकिन संसद में आरक्षण के इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। तो आपने कहा था कि इसमें बीजेपी की एक मतलब पिछली अपनी भूल सुधार जैसी चीज़ें भी वो सोच रही है, तो इसको राजनीति से प्रेरित क्यों ना माना जाए?
तो निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पौड़ी से जो शख्स बोल रहे थे,
अनिल डोबरियाल
जी, उन्होंने भी इस पे टिप्पणी की है कि अगर नहीं हारती तो शायद उनको याद नहीं आता इस मामले का बात करना। तो हाँ, निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है, इसमें तो कोई शक नहीं है
जी।
और सबको मतलब सब प्रतिबद्ध हैं इसके प्रति, तो कोई इससे इनकार भी नहीं कर सकता है। ये बड़ी भारी समस्या है एक
जी। एक ट्वीट हमारे फेसबुक पे, एक शहाबुद्दीन यूज़र हैं फेसबुक के, उन्होंने भी टिप्पणी की है कि मोदी के जो सवर्ण आरक्षण की जो धार थी उसे दूसरी पार्टियों ने कुंद कर दिया, अगर विरोध होता तो बिल पास नहीं हो पाता, तो बीजेपी को भरपूर लाभ नहीं मिलता। भरपूर लाभ मिलता अगर बीजेपी ये बिल पास नहीं कर पाती और विपक्ष जो है इस पे अड़ंगा लगा देता
जी।
तो
ये तो बहुत ही पेचीदा और बहुत ही कौटिल्य टाइप एक विवाद है, तर्क है। हाँ, हो सकता है कि अगर हार जाती बीजेपी तो जाती चुनाव में ये कह के कि हमने तो कोशिश की लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। लेकिन इसमें कोई इसके खिलाफ कोई भी नहीं है, बल्कि मायावती ने भी अगस्त में कहा था कि हम 18% आरक्षण के लिए तैयार हैं सवर्णों के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी भी समस्याएं हैं। अब क्या सही है क्या गलत है इसमें, तो ये तो सबके विवेक पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अभी आगे आने वाले समय में ये देखना पड़ेगा कि लोग इसको किस तरह से देखते हैं। डोबरियाल जी ने कहा कि अगर आय सीमा थोड़ी कम कर दी जाती, अब आय सीमा अगर कम कर दी जाती तो कंपटीशन भी कम होता, और उसमें फिर जो लोग गरीब हैं उनका ज़्यादा चांस होता आने का
जी। तो यानी कि ये आरक्षण की जो आपने कहा कि ये बात है, ये आगे तक और चलने वाली और फैलने वाली है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदिति फडणीस जी, और साथ ही धन्यवाद हमारे श्रोताओं का। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने, मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।